ओम शांति। बहुत बहुत समय पहले एक बहुत ही ऊर्जावान दक्ष और पारंगत चित्रकार था। उसने अपने छोटे से जीवन काल में बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की थी। उसके कई चित्र दूर दूर तक प्रसिद्ध थे और उसके मन में एक दिन आया कि मैं एक ऐसी कलाकृति बनाऊं, एक ऐसा चित्र बनाऊं जिसे देखते ही दिव्यता का अनुभव हो, एक ऐसा चित्र बनाऊं एक ऐसे व्यक्ति का कि जिसकी आंखों में भगवान दिखाई दे, एक ऐसा चित्र जिसे देखते ही स्वर्ग का आभास हो, एक ऐसा चित्र कि जो आज तक किसी ने नहीं बनाया। और वो युवा चित्रकार देश देश जगह जगह जंगल जंगल गांव गांव घूमता है, मंदिरों में मस्जिदों में धार्मिक स्थलों में, पर उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलता कि जिसकी आंखों में और जिसके चेहरे में ऐसी दिव्यता और ऐसी रौनक और ऐसी भव्यता जो कि साक्षात स्वर्ग है। बहुत घूमता है बहुत घूमता है, आखिर एक गांव में पहुंचता है और गांव के इसी एक पहाड़ी पर एक चरवाहा उसे दिखाई देता है, जवान जो कि इतना इनोसेंट नादान निर्दोष चित्त वाला निश्चल वृत्ति वाला। जैसे ही उस युवा को देखता है ये युवा चित्रकार, उसे लगता है यही वो व्यक्ति है जिसका मुझे चित्र बनाना है। और वो उस युवक का उस शेफर्ड का उस चरवाह का चित्र बनाता है और वो वास्तव में चित्र इतना सुंदर होता है, इतना सुंदर होता है कि वो चित्र इतना प्रसिद्ध हो जाता है कि दूर दूर तक हर गांव में हर घर में लोग अपने घर में उस चित्र को टंगाते हैं उस युवा चरवाहे का, जिसे देखते ही दिव्यता का अनुभव हो। मनुष्य में जो कुछ सुंदर है वो उस चित्र में दिखता था। मनुष्य में कितनी सुंदरता हो सकती है, देवत्व प्रकट होता था, डिवाइनिटी इनकार्नेट। उसके बाद 20 वर्ष गुजर जाते हैं और ये युवा चित्रकार अब बूढ़ा हो जाता है। जीवन का एक रूप उसने तब देखा था जब जीवन में सब कुछ सुंदर था, परंतु इन 20 सालों में उसने जीवन के कई कड़वे अनुभव किए थे और अब उसे लगा कि जीवन का वो केवल एक पहलू था जिसमें सब कुछ अच्छा था। जीवन का एक दूसरा पहलू भी है, एक दूसरा आयाम भी है, एक सेकंड डायमेंशन भी है कि जिसमें कड़वाहट है, जिसमें क्रोध है, क्रूरता है, अग्लीनेस है, डर्टीनेस है, गंदगी है, नफरत है, घृणा है, ईर्ष्या है। तो वो सोचता है मुझे अब ऐसे व्यक्ति का चित्र बनाना है जिसमें साक्षात नरक के दर्शन हो, जो इतना घृणा और इतना नफरत से भरा हुआ है कि उस जैसा साक्षात पाप धरा पर कहीं नहीं। और वो फिर से यात्रा आरंभ करता है, फिर से ढूंढने लगता है, पागल खानों में जाता है, शराब घरों में जाता है, वेश्यालयों में जाता है, उन सारे चीजों में जाता, जगह पर जाता है जहां पर नफरत हो, गंदगी हो, विकार हो। ढूंढते 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 आखिर वो एक कारागार में पहुंचता है, एक जेल में, एक बंदी गृह में। और वहां पर उसे पता चलता है एक कैदी है जिसने 7 खून किए हैं, उसे मृत्यु दंड मिला है और उसे डेथ सेंटेंस सुनाने वाले हैं कुछ ही दिनों में। वो कहता है मुझे उस अपराधी से मिलना है और वो उसके सामने जाता है तो साक्षात घृणा और साक्षात नफरत, इतना उसका चेहरा खतरनाक क्रूर, और वो उसका चित्र बनाता है। चित्रकार कहता है कि मुझे इसी अपराधी का चित्र बनाना है। एक तो वो चित्र बनाया था जो बहुत सुंदर था, और अब ये चित्र मुझे बनाना है जो कि मनुष्य में जो कुछ बुराई है, खराब है, द वर्स्ट है, वो जिससे दिखाई दे। और वो उसका चित्र बनाता है, चित्र पूरा होता है, अपना पुराना चित्र वो लाता है और दोनों चित्रों को आमने सामने रखता है चित्रकार, और देखता है इसमें से अच्छा कौन है, कला की दृष्टि से, कला की दृष्टि से कि श्रेष्ठतम चित्र कौन सा है। और जब वो देखते रहता है, पीछे से रोने की आवाज आती है। चित्रकार पीछे मुड़कर देखता है तो वह अपराधी रो रहा है। उससे पूछता है, मेरे दोस्त तुम क्यों रोते हो? वो कहता है, मैं इतने दिन तक तुमको बताया नहीं, जब तुम मेरा चित्र निकाल रहे थे मैं चुपचाप था, पर आज मैं नहीं रोक सकता। जो चित्र तुमने पहला बनाया था वो भी मैं ही हूं। जो चरवाह तुमको उस पहाड़ी पर मिला था और जिसके जीवन में वो सुंदरता थी और वो पवित्रता थी और वो दिव्यता थी, वो मैं ही हूं। और मैं अब देखता हूं कि इस 20 वर्ष में मैंने ये कौन सी यात्रा पार कर ली, कहां तो धरती पर आए थे 16 कलाओं से संपन्न दिव्य गुणधारी संपूर्ण पावन, कंचन काया एक छत्र साम्राज्य, और कहा अब सुंदर से श्याम, सॉल्वेंट से इनसॉल्वेंट, प्रिंस से बेगर, ये देवताओं ने भी कैसी यात्रा पार कर ली, कैसे सुंदर चित्र थे हमारे, जिन्हें देखकर ही दिव्यता का अनुभव होता है, और अब ये कैसा चित्र बन गया है, और है एक ही व्यक्ति। आज सुबह की अव्यक्त वाणी, क्या देखा बाबा ने? पिछले संडे क्या देखा था? चित्रशाला देखी थी और उसमें चित्र देखे थे चरित्र के, आज तस्वीर देखी तकदीर की। भगवान भी देखो कैसा है, विचित्र, कभी क्या देखता है तो कभी क्या, कभी हिंदी में देखता है तो कभी उर्दू में देखता है, कभी लाइट देखता है तो कभी रेखाएं देखता है। लाइट की स्पीड क्या है नीचे से ऊपर जाते हुए, लाइट का कलर क्या है, लाइट की कंटिन्यूटी कैसी है, कहीं रुकती तो नहीं है, प्यूरिटी की पर्सनैलिटी की लाइट चारों ओर फैल रही है, रियलिटी की रॉयल्टी, हर्षित मुक्ता और स्पष्टता, स्वच्छता और स्पष्टता है, संबंधों की समीपता का सितारा कितना चमक रहा है। कभी क्या देखता है तो कभी क्या देखता है, ऐसी अद्भुत चित्रशाला बाप दादा देख रहे हैं। तो आज बाबा ने क्या देखा? तस्वीर देखी। कौन सी तस्वीर? तकदीर की तस्वीर, भाग्य की तस्वीर, भाग्य का चित्र, द पिक्चर ऑफ फॉर्च्यून। देने वाला दाता एक, परंतु लेने वालों ने अलग अलग लिया। श्रेष्ठ ब्राह्मण, श्रेष्ठ जन, श्रेष्ठ वर्षा, श्रेष्ठ युग, श्रेष्ठ पुरुषोत्तम संगम युग, श्रेष्ठ खजाना, श्रेष्ठ परिवार, श्रेष्ठ वेला, श्रेष्ठ तकदीर की रेखा, परंतु फिर भी तस्वीर अलग अलग क्यों? कितना अच्छा प्रश्न पूछा बाबा ने कि दिया सबको एक जैसा, परंतु फिर भी सबने लिया अलग अलग, और जो तकदीर की तस्वीर है वो कर्म, तकदीर की रेखा जो है वो कर्म में तस्वीर जो बनी अलग, हरेक की अलग अलग, अंतर है। तो मुरली में बाबा ने हम सब की तस्वीर देखी, तस्वीर में कौन कौन सी रेखाएं हैं, तस्वीर में संपन्नता कितनी है, तस्वीर में कमी कितनी है, किसकी तस्वीर मूल्यवान है और किसकी तस्वीर 100 रुपए की है और किसकी हजारों में। जो संपन्न होगी वो मूल्यवान, जो कमी होगी वो कम इसमें बेची जाएगी। रेखाएं कौन कौन सी है, मूल्य क्या क्या है, संपन्नता कैसी है, और तस्वीर में तकदीर बनाने वाला दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, ये भी देखा। ये सबसे बड़ी परख है तस्वीर की, कि तस्वीर में क्या दिखाई दे, जिसने तकदीर बनाई है वो तकदीर बनाने वाला दिखाई दे। तस्वीर खो जाए, तस्वीर अदृश्य हो जाए, चित्र खो जाए और चित्र में विचित्र दिखाई दे, व्यक्त खो जाए और व्यक्त में अव्यक्त दिखाई दे, तो तस्वीर हमारी कैसी है, चित्र हमारा कैसा है, कमियों वाला है या संपन्न है, रंग कौन से है उस चित्र में और कैसे रंग है, ये सारी बातें आज की मुरली में देखी। तो सबसे पहले तो भाग्य की बात है, कौन कौन सा भाग्य, सबसे पहला श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन, दूसरा श्रेष्ठ जन्म है हमारा, ये साधारण जन्म नहीं है, हमारा नवजन्म हुआ है, पुनर्जन्म हुआ है, मर्जीवा जन्म है, द्विज, ट्वाइस बॉर्न। बाइबल में एक जगह लिखा है, दोज हु आर वंस बॉर्न डाई ट्वाइस, दोज हु आर ट्वाइस बॉर्न डाई वंस। जिसने एक बार जन्म लिया है वो दो बार मरता है, एक तो जीवन भर मरते रहता है दुखों में, चिंताओं में, मुश्किलों में, समस्याओं में, और एक शरीर की मृत्यु। पर जो दो बार मरा है, एक तो डाई ट्वाइस, एक तो लौकिक से, वो एक ही बार मरेगा, अनलेस एंड अनटिल यू आर ट्वाइस बॉर्न यू शैल नॉट इनहेरिट द किंगडम ऑफ हेवन। जब तक तुम्हारा नया जन्म नहीं होगा स्वर्ग का राज्य तुम्हारा नहीं होगा। तो यह जन्म कैसा है, श्रेष्ठ जन्म। यह परिवार कैसा है, श्रेष्ठ परिवार। यह वेला कैसी है, श्रेष्ठ वेला। यह युग कैसा है, श्रेष्ठ युग। तो श्रेष्ठ युग है, श्रेष्ठ वेला है, श्रेष्ठ परिवार है, श्रेष्ठ बाप है, श्रेष्ठ हम है, श्रेष्ठ जन्म है, श्रेष्ठ खजाने हैं। तो जीवन भी श्रेष्ठ होना चाहिए, तो जीवन की तस्वीर भी श्रेष्ठ होनी चाहिए। हम वो नहीं कर सकते जो संसार की आत्मा है, संसार के लोग कर रहे हैं। हमारे कर्मों में और उनके कर्मों में अंतर है। हम उस मार्ग पर नहीं चल सकते जिस मार्ग पर संसार चल रहा है। हमारा मार्ग सत्य का मार्ग है, समर्पण का मार्ग है, निश्चय का मार्ग है, पवित्रता का मार्ग है। वो लोग केवल गाने वाले और केवल चिल्लाने वाले, हम पाने वाले हैं। Not everyone who cometh and saith, Lord, Lord, but he that doeth the will of my Father shall enter the kingdom of heaven. केवल वो नहीं जो आकर कहे हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु, परंतु जो मेरे पिता की मत पर चले वही स्वर्ग के राज्य के अधिकारी होंगे। पहले तो संसार उस पिता को ही नहीं जानता, ऐसा घोर तिमिर स्टार्क डार्कनेस संसार में है। तो सबसे पहली बात आज की मुरली से, स्वयं की ग्रेटनेस, स्वयं की महानता, स्वयं की दिव्यता को स्वयं जानना है। स्वयं स्वयं को मान देना अर्थात स्वमान। हमें दूसरों के मान की आवश्यकता नहीं है। एक बहुत बड़ा चित्रकार इस जगत में कभी हुआ था जिसको अपने जीवन में कभी कोई मान नहीं मिला। वो एक ऐसा चित्रकार है कि कला के जगत में उसका होना संसार को दो भागों में विभाजित करता है, उसके पहले का युग और उसके बाद का युग। पर उसके जीवन काल में कभी उसने किसी ने उसे सम्मान नहीं दिया, उसकी एक भी पेंटिंग कभी बेची नहीं गई, लोग उसकी हंसी उड़ाते थे। विंसेंट वॉन गॉग, डच पेंटर, उसे वो सब स्वीकार नहीं था जो संसार के लोग करते हैं। उसे किसी के लिए काम करना स्वीकार नहीं था, जैसे बाकी भी पेंटर हुए, माइकल एंजेलो भी हुआ है, पर उसमें और डच विंसेंट वॉन गॉग में बहुत अंतर है। उसे किसी के लिए चित्र बनाना और वो खरीदे कोई और फिर पैसे मिले, इसके लिए वो नहीं करता था। उसके चित्र अद्भुत थे, लोग हंसते थे, ये कैसे चित्र है तुम्हारे। एक भी पेंटिंग उसकी कभी बेची नहीं गई उसके जीवन काल में। भूखा मरता था पर पागल था, चित्र बनाते रहता था। फ्रांस के एल्स में सूरज की तपती धूप में बैठकर सूर्य का चित्र बनाता था दिन भर। सनफ्लावर के चित्र बनाता था, प्रकृति के नेचर के चित्र बनाता था, पर विचित्र चित्र रहते थे उसके चित्रों में। झाड़ इतने ऊंचे थे कि आसमान से ऊपर जा रहे, लोग कहते तुम पागल तो नहीं हो गए, ये कैसे झाड़ बनाते हो। वो कहता है मैं झाड़ की पुकार को सुनता हूं, झाड़ ऊंचाई में उड़ना चाहता है, आकाश से परे जाना चाहता है। उसके चित्र विचित्र थे, जो देखना चाहे देख सकते हैं। ऐसे ऐसे विचित्र चित्र उसके जीवन काल में उसे कुछ नहीं मिला, ना प्रसिद्धि मिली, ना कुछ मिला, ना कुछ मिला। उसका छोटा भाई था, वो उसको पैसे भेजता था ताकि ये भूखा मर ना जाए। और उसके छोटे भाई ने एक बार किसी व्यक्ति को पैसे दिए और कहा कि जाओ इसके दुकान का चित्र खरीदो। और वो व्यक्ति आता है और विंसेंट वॉन गॉग की चित्रशाला में इतने चित्र है, और वो कहता है ये चित्र मुझे दे दो। वो कहता है ये चित्र, तुमने बाकी चित्र देखे भी नहीं, मैं देखता हूं कि तुम्हारी आंख चित्रकला की नहीं है, तुम जरूर कुछ गड़बड़ कर रहे हो, जरूर तुम्हें किसी ने भेजा है, परख शक्ति तुम में नहीं है। और फिर वो पता करता है तो पता चलता है उसके भाई ने भेजा है। उसको बहुत दुख होता है, वो कहता है मुझे तुम्हें अपना चित्र नहीं भेजना है, जाओ। कोई भी चित्र बिकता नहीं है उसका उसके जीवन काल में। और जब जीवन की यात्रा पूरी होती है, जिस दिन दिन भर चित्र बनाते बैठता है सूरज का तपती धूप में, और कहते हैं उसका जीवन बड़ा अजीब था, बंदूक से अपने आप को मार देता है, सुसाइड एट द एज ऑफ बिलो 40, 36, 37 में उसके कार्य पूरा हो जाता है। और उसके जाने के बाद फिर संसार उसके चित्रों को जानता है। उसका एक एक चित्र आज की तारीख में लाखों करोड़ों का है। क्योंकि उसके अपने सिद्धांत थे, वो बातें करता था प्रकृति से। उसे उन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं था, संसार से, संसार की रीति रस्म रिवाज। उसके पिताजी तो चाहते थे वो पादरी बने, पर वो कहता था मैं पादरी बन के क्या करूं, झूठ बोलूं, लोगों को क्या सुनाऊं भगवान के बारे में, मुझे भगवान खुद ही पता नहीं कौन है, और मैं भगवान के बारे में सुनाऊं तो झूठ हो जाएगा। मैं जीसस क्राइस्ट के बारे में, मुझे पता ही नहीं जीसस क्राइस्ट था या नहीं था, मैं क्या सुनाऊं, अगर मैं पादरी बनता हूं तो झूठ ही झूठ रहेगा जीवन में, और मुझे झूठ स्वीकार नहीं। वो अपने किस्म का व्यक्ति था। किसी ने एक बार उसको कहा था, एक स्त्री ने, तुम्हारी कान बहुत सुंदर है। उसने कहा, तुम पहली स्त्री हो जिसने कहा मेरा भी कुछ सुंदर है। वो अपने कान काट के पैकेट में डाल के उसको लेके जाके देता है, ब्लीडिंग ईयर। उसके चित्र भी आप देख सकते हैं, उसका कान बह रहा है। तो ऐसे भी संसार में चित्रकार और व्यक्ति हुए जो अपने सिद्धांतों से जिए, उन्हें संसार क्या कहता है इसकी कोई परवाह नहीं थी। ये बात हम इसके लिए कह रहे हैं कि बाबा ने हमारा जीवन इतना ऊंचा, इतना श्रेष्ठ, इतना महान, इतना दिव्य बनाया है कि उसी ऊंचाई में रहना है, फिर संसार क्या कहता है, संसार क्या सोचता है इसकी हमें कोई परवाह नहीं। तो श्रेष्ठ बाप, श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा, श्रेष्ठ जीवन, श्रेष्ठ जन्म, श्रेष्ठ वेला, श्रेष्ठ तकदीर की लकीर, श्रेष्ठ परिवार, श्रेष्ठ खजाना, कितने सारे श्रेष्ठ गिनाए मुरली में। तो ये सबसे पहली बात, अपनी श्रेष्ठता का चिंतन, अपनी महानता का चिंतन। यह अहंकार नहीं, समान है, और समान अहंकार को नष्ट करने वाला है। दूसरी बात, चित्र के विषय में, चित्र संपन्न कितना है या फिर उसमें कमी है, चित्र की रेखाएं कैसी है, कुछ रेखा है या और कुछ रेखा नहीं है, ऐसा तो नहीं आंख बनी है परंतु क्या सुंदर नहीं है। बाबा ने हम सबका कितना सुंदर चित्र निकाला है, हरेक का। मुरली में, लास्ट मुरली में भी था, बाबा हरेक की विशेषता देखते हैं, हरेक की विशेषता। एक अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, यदि किसी बच्चे में 9 कमियां है और 1 विशेषता है तो बाबा एक विशेषता को देखते। बाप और बच्चों में अंतर यह है कि यदि किसी में 9 कमियां है और 1 विशेषता है तो बाप उस विशेषता को देखते हैं और बच्चे उन कमियों को देखते हैं। अगर किसी में 9 विशेषता है और 1 कमी है तो बच्चे क्या देखते हैं, इसकी कमी देखते हैं। ये बाकी सब तो इसका भाषण वगैरह तो ठीक है, पर अमृत वेला इसका इतना योगी इतना अच्छा नहीं है। हाँ, इसका योग तो करता है, ठीक है, मुरली क्लास भी जाता है, पर इसका जो बोलने का जो ढंग है ना, ये कोई इतना रॉयल नहीं है। इसका बाकी सब ठीक है, पर इसकी थोड़ी दृष्टि में गड़बड़ है। बाकी सभी ठीक है, पर बोलता बहुत है। तो बाप और बच्चों में क्या अंतर है, बच्चे अगर किसी में 9 विशेषता है तो 1 कमी को ढूंढते हैं, दिन रात चिंतन करते कुछ तो कमी होगी, ढूंढने दो, योग में चिंतन करते हैं उसका। यही अंतर है बाप और बच्चों में। तो बाप हरेक की विशेषता देखते हैं और हरेक का श्रेष्ठ चित्र बनाते हैं, परंतु फिर भी किसी की कोई रेखा कम तो किसी की कोई रेखा कम। तो चित्र में 5 रेखाएं देखी, क्या देखा बाबा ने चित्र में, 5 रेखाएं, उनमें से 2 बहुत महत्वपूर्ण है, मस्तक और नयन वाली, शोभा है शरीर चित्र की। एक राजा होता है जो कि अंधा होता है 1 आंख से, और उसका 1 पैर भी नहीं होता है, और वो एक बार अपने राजमहल में घूमते रहता है तो उसे देखता है पूर्वजों के चित्र दिखते हैं, उसके पिताजी, उसके दादा, उसके परदादा, सबके चित्र टंगे हुए हैं। वो सोचता है मेरा कोई भी चित्र नहीं, मेरे जाने के बाद क्या होगा। तो राज्य में घोषणा करता है कि ऐसा कोई चित्रकार आए और मेरा चित्र निकाले। तो पहला चित्रकार आता है, राजा का चित्र निकालता है, एक आंख से अंधा और एक आंख से लंगड़ा। राजा चित्र देखता इतना क्रोधित हो जाता है, कहता है चित्रकार को 10 साल की सजा सुनाई जाए। दूसरे चित्रकार डर जाते, एक दूसरा चित्रकार हिम्मत करके आता है, वो राजा को दोनों आंख वाला बताता है। राजा कहता है इतना बड़ा झूठ, 5 साल की सजा। फिर एक बूढ़ा चित्रकार आता है, वो एक ऐसा चित्र बनाता है कि राजा उसको देखकर इतना खुश हो जाता है। वो चित्र ऐसा बनाता है कि राजा एक घोड़े पर बैठा हुआ है, जिसका एक पैर इधर से है पर दूसरा पैर तो उधर है, वो दिख नहीं रहा है, और शिकार तीर कमान लेके एक आंख बंद है। तो ऐसा चित्र बनाता है तो राजा बहुत ही खुश होता है, इतना सुंदर चित्र कि उसकी कुरूपता को वो छुपा देता है, क्योंकि एक पैर उधर और एक आंख बंद, क्योंकि तीर लगा रहा है निशाना। तो बाबा भी तो हमारा ऐसा ही चित्र बनाता है, हम भी तो ऐसे ही लूले लंगड़े अंधे काने बहरे, पर चित्र बहुत अच्छा बनाता है। अव्यक्तवाणी शांतिवन में अभी अभी जो चली, दिलाराम बाप दिल राज दुलारे बच्चों को देख रहे, राज दुलारे अर्थात तीन तख्त, ब्रुकुटी तख्त, दिल तख्त और विश्व राज विश्व अधिकारी का तख्त, फ्यूचर का, और सबके लिए कहा ये सभी दिल तख्त नशीन। तो 5 रेखाएं हैं, कौन कौन सी, चित्र में रेखाएं होती है ना, जैसे वो चित्र है उसमें रेखाएं हैं, कौन सी रेखाएं देखिए, पहले तो मस्तक की रेखा, फिर नैनों की रेखा, फिर होठों की, हाथ से पहले होठ, और फिर हाथों की रेखाएं, और फिर पैरों की रेखा। पैरों की रेखा में क्या देखा, कदम कदम पर श्रीमत की शक्ति कितनी है। हाथों की रेखाओं में क्या देखा, श्रेष्ठ कर्म की रेखा। होठों की रेखा में क्या देखा, संपन्नता और मुस्कुराहट और संतुष्टता। स्माइल इज अ कर्व दैट मेक्स एवरीथिंग स्ट्रेट, इंग्लिश में कहते हैं। मुस्कुराहट क्या है, कर्व है, पर बाकी सभी चीजों को सीधा कर देती है। आंखों में क्या देखा, रूहानियत की, रूहानी दृष्टि की शक्ति। मस्तक में क्या देखा, मनसा वृत्ति की शक्ति। तो मनसा अर्थात मनसा वृत्ति, आंखें अर्थात रूहानियत। तो ये 5 रेखाएं देखी, पांचों ही रेखा किस किस की बहुत अच्छी थी और सभी थी, अखंड थी, सुंदर थी, और किसी किसी की टूटी थी, किसी में कुछ था और कुछ नहीं था। तो सबसे पहला है मनसा, मनसा वृत्ति। यदि संसार की किसी एक आत्मा के प्रति भी घृणा है तो हम संपन्न नहीं बन सकते। यदि इस संसार की किसी एक आत्मा के प्रति भी हमारे मन में घृणा, नफरत, ईर्ष्या, तो हम संपन्न नहीं बन सकते। मनसा वृत्ति को इतना ऊंचा उठाना, इतना महान बनना बनाना कि संसार की जितनी आत्माएं हैं इतनी शुभ भावना उनके लिए भरना, बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। जो हमारी स्तुति करते हैं, तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं, उनके लिए शुभ भावना रखना बहुत आसान है, पर जो क्या नफरत नहीं और कुछ निंदा करते हैं, गाली देते सामने नहीं, सामने तो बहुत अच्छा अच्छा बोलते, पीछे जाकर पीठ पीछे फंसाते हैं। धोखा दिया है जिन्होंने, ग्लानी की है जिन्होंने, अपमान किया है जिन्होंने, विरोध करने वाले जो है उनके प्रति शुभ भावना तो बड़ा मुश्किल काम है। पर मनसा रेखा अर्थात मनसा इतनी शुद्ध, इतनी पवित्र, इतनी निर्मल हो कि किसी के प्रति हमारे मन में कोई नेगेटिविटी नहीं, क्योंकि हमने राम ड्रामा को समझा है, ड्रामा के गुह्यतम राजों को समझा है। ये ड्रामा भगवान को पसंद है तो तुम्हें भी पसंद आना चाहिए। ये ड्रामा कल्याणकारी है, ये ड्रामा न्यायकारी है, ये ड्रामा विविधतापूर्ण है, ये ड्रामा रिपीट हो रहा है। इस ड्रामा में हर एक्टर कैसा है, एक्यूरेट। इस ड्रामा का हर एक्टर कैसा है, यूनिक। इस ड्रामा का हर एक्टर कैसा है, स्पेशल। इस ड्रामा का हर एक्टर यूनिक, स्पेशल नहीं, मास्टरपीस है, सर्वोत्तम कलाकृति है, उसमें कुछ और करने की जरूरत नहीं। इस ड्रामा का हर एक्टर कैसा है, कैसा है, कैसा है, एक्यूरेट। और कैसा है, मास्टरपीस। और कैसा है, वो हो गया विशेष, हो गया स्पेशल, हो गया परफेक्ट है। और कैसा है, हीरो एक्टर है। और कैसा है, मास्टर सर्वशक्तिमान। सारे इस ड्रामा का हर एक्टर कैसा है, अविनाशी, भगवान का बच्चा है। और इस ड्रामा का हर एक्टर कैसा है, अपना पार्ट बजा रहा है। इस ड्रामा का हर एक्टर कैसा है, डिफरेंट है, एक ना मिले दूसरे से। हर एक के संस्कार, स्वभाव, प्रारब्ध, बीमारी, विशेषता, सब कुछ अलग है। इस ड्रामा का हर एक्टर कैसा है, हाँ, यूनिक, वो हो गया आर्टिस्ट है। और इस ड्रामा का हर एक्टर कैसा है, वो हो गया गॉडली स्टूडेंट। और इस ड्रामा का हर एक्टर कैसा है, निर्दोष। निर्दोष नहीं, संपूर्ण निर्दोष, सारे झगड़े समाप्त। इस ड्रामा का हर एक्टर संपूर्ण निर्दोष है, हर एक अपना पार्ट प्ले कर रहा है, उसका पार्ट ही वैसा है। लक्ष्मण को दुख नहीं होता है कि ये रावण इतना जोर जोर से क्यों हंसता है, क्योंकि पार्ट प्ले कर रहे। थोड़े देर के बाद लक्ष्मण और रावण स्टेज के पीछे बैठकर चाय पी रहे हैं, और रामलीला चल रही है, ये भी खेल चल रहा है। कोई विरोध कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ऐसा तो चाहिए ना। नहीं तो रामायण में अगर रावण ही ना हो, राम की शादी हुई, सीता से शादी हुई, राज्य पूरा हुआ, लव कुश, राज्य मिल गया, हो गया। मंथरा का भी पार्ट है, कैकेयी भी चाहिए, वो निषाद राज भी चाहिए, वो ताड़का और सुभाव भी चाहिए, वो कुंभकर्ण चाहिए, वो इंद्रजीत चाहिए, वो हनुमान चाहिए, तब तो थोड़ा मजा आएगा, वैरायटी चाहिए। तो हमारे जीवन में, हमारे घर में हम सोचे मैं जैसा बोलूंगा सब अगर वैसा ही करने लगे चुपचाप, मैं चाहता हूं मेरे घर के सभी ज्ञान में चले, सभी ज्ञान में आ गए, सभी अमृत वेला पावरफुल, सभी कोई कोई विरोध नहीं, कुछ नहीं, कोई तो कुछ करेगा, तो ड्रामा में मजा है। कोई ऐसी फिल्म देखने जाता है क्या टॉकीज में, मल्टीप्लेक्स में, जिसमें चालू हुई, शादी हुई, परिवार, बच्चे, एंड, कोई विलन ने एंट्री नहीं की कभी। तो ये भी तो ड्रामा है, इसमें हर एक एक्टर का पार्ट है, तो साक्षी होकर देखो कितनी वैरायटी संस्कार है आत्माओं के। सतयुग में मिलेंगे क्या ऐसे संस्कार, वहां सब धुलाई होकर निकल के आएंगे। अभी मजा है, कितने वैरायटी संस्कार। हम सोचते हैं ये ऐसा करना चाहिए, दूसरा कहता नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए। तो मनसा वृत्ति, मनसा की रेखा, मेंटल प्यूरिटी, मनसा को श्रेष्ठ बनाना, मन के संकल्पों को महान बनाना, सारा काम मन पर करना है। मन नीचे ना हो जाए, इसके लिए उसको कीप ऑन फीडिंग, पावरफुल विचारों से उसको भरते जाओ, मुरली से समान लेते जाओ, अभ्यास करते जाओ, ताकि वो नीचे ना उतर जाए, क्योंकि उसका स्वभाव है नीचे आना। हमें उसे ऊंचाई में रखना है, महानता में रखना है, श्रेष्ठता में रखना है, सेल्फ प्यूरिफिकेशन। इतना किचड़ा और इतनी गंदगी इसमें भरी है, पता नहीं कहां से आ गई। इस मन को निर्मल कर देना, इसके लिए वो सारी चीजों को छोड़ दो जिससे मन में अपवित्रता आती है। स्टॉप स्टॉप स्टॉप, नो नो नो, बैन बैन बैन, बाबा ने मना किया है। ऐसे वो सारे चैनल्स और ऐसी वो सारी किताबें और ऐसे वो सारे सोशल मीडिया जिससे काम के कीटाणु फेंके जाते हैं। स्टॉप, आवश्यकता नहीं है उसकी। विचार धूल है, यदि मन दर्पण है तो। और इसको स्वच्छ करते रहना, इसके लिए श्रेष्ठ संग करते रहना, श्रेष्ठ अध्ययन करते रहना, श्रेष्ठ देखते रहना। ऐसे कोई काम ना करना जिसके लिए पश्चाताप हो। और ये संगठन, ये यज्ञ किला है। इस किले के अंदर रहेंगे तो पाप नहीं होंगे, इस किले के बाहर जाते ही विकर्म होंगे। तो मनसा की रेखा अर्थात श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ भावनाएं, श्रेष्ठ दृष्टिकोण, सब कुछ महान, सब कुछ श्रेष्ठ। दूसरा है रूहानी दृष्टि की शक्ति, दृष्टि पर काम करना है। एक तो देह ना देखकर आत्मा देखना, और दूसरा अवगुण ना देखकर विशेषता देखना। ये दो काम इस दृष्टि से होने चाहिए। देह से ऐसा वैराग कि देह मिट्टी नजर आए, ध्यान केवल आत्मा की तरफ। इस दृष्टि को इतना प्योर बनाना, जैसे बाप दादा की दृष्टि कितनी प्योर है। बाबा जब आते हैं और दृष्टि देते हैं, देखा कैसी दृष्टि होती है, कितनी शक्तिशाली दृष्टि है। प्यूरिटी का सागर उन आंखों से झांक रहा है। आज की मुरली में ना, जैसे बाप प्यार का सागर है, तुम भी प्यार का सागर बनो। जैसे वो ज्ञान का सागर है, तुम भी ज्ञान के सागर बनो। जैसे वो संपन्न है, तुम भी संपन्न बनो। बी ई परफेक्ट इवन एज माई फादर दैट आर्ट इन हेवन इज परफेक्ट, बाइबल में एक जगह लिखा है। वैसे ही संपन्न, संपूर्ण और परफेक्ट बनो जैसे मेरे पिता संपूर्ण, संपन्न, परफेक्ट है। दृष्टि पर काम करना है, प्यूरिफाई करना है इस दृष्टि को, रूहानी दृष्टि। यदि दृष्टि देह की तरफ जाती है और देह आकर्षित करता है, तो देह की वास्तविकता का चिंतन करना है। देह में है क्या? कल भी कहा था, संसार में जितनी गंदगी होगी वो इस शरीर के अंदर है। कौन सी सुंदरता और कौन सा क्या? ब्यूटी इज बट स्किन डिप, द रियल ब्यूटी इज ऑफ द सोल। सच्ची सुंदरता आत्मा की है, शरीर की नहीं। तो अपनी विजन को प्यूरिफाई करने के लिए एक अभ्यास है कि सुबह सुबह ये लक्ष्य रखना है कि सारे दिन भर कम से कम 10 लोगों को आत्मा देखना है, या 25 लोगों को आत्मा देखना है, या 40 लोगों को आत्मा देखना है। रास्ते पर चलते फिरते ये आत्मा है, ये आत्मा है। ब्रह्मा बाबा पूरा लिखते रहते थे, मैं आत्मा हूं, यशोदा आत्मा है, ये आत्मा है, वो आत्मा है, आत्मा आत्मा। यही पहला पाठ है। इसी पहले पाठ को पक्का करना है। फिर से हर मुरली में यही बात आती है। इसके लिए अमृत वेला भी अभ्यास करना, मैं आत्मा सब आत्माओं को देख रही हूं, मैं आत्मा सब आत्माओं के सम्मुख हूं और उन्हें सकाश दे रही हूं, मैं जब किसी से मिल रहा हूं आई एम मीटिंग अ सेट ऑफ संस्कार्स। आत्मा जिसके अनुसार संस्कार है मैं उससे मिल रही हूं, जो कि मुझसे भिन्न संस्कार है, मैं किसी शरीर से नहीं मिल रही हूं। तो रूहानी बनानी है अपनी दृष्टि को। तीसरा बताया, मुस्कुराहट, संपन्नता, संतुष्टता, कंटेंटमेंट। मनुष्य का मन ऐसा है कि उसको इतनी चीजें चाहिए, इतनी चाहिए, और जैसे ही मिल जाती है व्यर्थ हो जाती है, फिर दूसरी चाहिए। संतोष एक धन है, एक संपत्ति है, कि जितना मिला उतना काफी है और कुछ नहीं चाहिए हमें। संसार की भाग रहे अतृप्त है। हम हमेशा उदाहरण देते हैं, लियो टॉल्स्टॉय एक लेखक हुआ रूस का, उसने लिखा है एक व्यक्ति के विषय में, पखोम नाम का एक किसान है जो जिसकी छोटी सी खेती है और बहुत खुश है और बहुत संतुष्ट है। एक दिन एक परिव्राजक, एक सन्यासी उसके घर में आता है और कहता है, तुम यहां क्या कर रहे हो, तुम वहां जाओ दूसरे देश में, वहां पर जमीन बहुत सस्ती और बहुत अच्छी है, वहां क्यों नहीं जाते। उसके मन में लालच आता है, हाउ मच लैंड डज द मैन नीड, ये उस कहानी का शीर्षक है, 1886 में पब्लिश हुई ये कहानी। वो व्यक्ति उसको बेचता है और उस नई जगह पर जाता है, लोगों से पूछता है या जमीन के क्या भाव, लोग कहते हैं जमीन के भाव या मुफ्त मिलती है, पर एक ही शर्त है, जितना तुम भागोगे उतनी जमीन तुम्हारी, पर वापस भी वहां पहुंच जाना। वो रात भर सो नहीं पाता, बेचैन रहता है, कितना भागू और कितना नहीं। सुबह पहुंचता है, सारे गांव वाले वहां खड़े हैं, लकीर है, और वहां से भागना चालू करता है कि जितना मैं चलूंगा वो जमीन मेरी, परंतु शर्त है सूर्यास्त से पहले वापस पहुंचना है। भागने लगता है, भागने लगता है, भागने लगता है, भागने लगता है, प्यास लगती है, सोचता है पानी पीने के लिए रुका तो जमीन थोड़ी कम हो जाएगी, पानी तो बाद में जीवन भर पीते रहूंगा, तो बॉटल फेंक देता है और भागता है और हाफता है और भागता है और हाफता है। भूख लगती है, सोचता है खाना खाने के लिए रुका, खाना तो लाया हूं, पर रुका तो जमीन कम हो जाएगी ना, खाना फेंक देता है और भागने लगता है और भागने लगता है, और 12 बज जाता है, सोचता है वापस जाना चाहिए क्योंकि पहुंचना भी है, परंतु सामने की जो जमीन है थोड़ी ज्यादा हरी हरी दिख रही है। आज कहा बाबा ने, पंजाब और हरियाणा वाले खुशी से हरे भरे, बिहार अर्थात बाहर, राजस्थान अर्थात श्रेष्ठ चित्र, तमिलनाडु अर्थात नगाड़ा बजाने वाले, बाप को प्रत्यक्ष करने वाले। एक एक स्टेट के साथ में बाबा ने एक एक जोड़ के रखा है, महाराष्ट्र अर्थात महान कार्य करने वाले, गुजरात अर्थात रात बीत गई, हर एक के साथ एक एक जोड़ा है। तो वो सोचता है अभी वापस जाऊं, परंतु सामने की जमीन ज्यादा उपजाऊ, उर्वर, फर्टाइल, थोड़ा सा भागता हूं फिर चले जाऊंगा, और भागता है। 2 o'clock, सोचता है अभी तो लौटना चाहिए नहीं तो पहुंचूंगा नहीं, परंतु सामने की जमीन थोड़ी सी मिल जाए तो थोड़ा सा और भागता है, और फिर तो 4 बज जाते, सोचता है अब तो वापस लौटना ही पड़ेगा, और लौटना चालू करता है। अब इतनी तेजी से भागता है, इतनी तेजी से भागता है क्योंकि बहुत कम समय है, सूर्यास्त होने को है, और इतना भागता है और हाफता है और भागता है और हाफता है, एंड रनिंग एंड पैंटिंग एंड रनिंग एंड पैंटिंग, भागता है भागता है, दिखाई देते है गांव वाले इंतजार कर रहा है, और जोर से भागता है, परंतु इधर सूर्यास्त हो रहा है। इतना तेजी से भागता है कि लकीर के पहुंचने से कुछ अंतर में ही धड़ाम से नीचे गिरता है और मर जाता है। गांव वाले कहते हैं आज एक पागल फिर मर गया, क्योंकि रोज एक ऐसा आता है। हाउ मच लैंड डज द मैन नीड, उसको उतने ही जगह में दफनाया जाता है। पर मनुष्य ऐसा है कि भाग रहा है और भाग रहा है और भाग रहा है, और भगवान आया है कहता है चलो वापस, वो कहता है 5 मिनट्स, थोड़ी सी जमीन ले लेता हूं, जमीन थोड़ी ज्यादा, एक प्लॉट और ले लेता हूं, बच्चों के काम आएगा, एक घर थोड़ा बना लेता हूं और थोड़ा ये बैंक का भी देख लेता हूं। पुरुषार्थ तो होते ही रहेगा, पुरुषार्थ कहीं भागा जा रहा है क्या? अमृत वेला तो खड़ा ही है अपनी जगह, पर रात में काम भी तो करने हैं। 12 बजे तक तो काम करना ही है, अमृत वेला होते रहेगा। भगवान कहता है आ जाओ मैं लेने आया हूं, बीत चली दुख भरी रात स्वर्णिम प्रभात में लाया हूं, त्यज अगर मगर आ जाओ इधर राजयोग की राहों में। पर हम कहते हैं रिलैक्स बाबा, कूल बाबा, डोंट गेट स्ट्रेस्ड, हम सब संभाल लेंगे, हम है ना शांत। बाबा इतना उतावले क्यों हो रहे हो? हैव पेशेंस, पेशेंस ऑफ सागर ऑफ पेशेंस, ओशन ऑफ पेशेंस को हम पेशेंस देते हैं। हैव पेशेंस, हम पहुंच जाएंगे, आप जाओ आगे, बाकियों को लेके जाओ, मैं आ रहा हूं, बस थोड़ा सा पैसा कमाना है। हिम्मत दिलाते हैं बाबा को। तो तीसरी रेखा है संतुष्टता की, जो मिला जो प्राप्त हुआ बहुत है, अब नहीं चाहिए, क्यों पकड़ के हो, छोड़ो तो छूटे। 3 प्रकार के पंछी देखे, एक मुरली थी ना, छोड़ो तो छूटे, एक पंछी है वो झाड़ पर बैठे हुए है, पकड़ के है और चिल्लाते हैं छुड़ाओ 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 छुड़ाओ। बाप कहते हैं छोड़ो तो छूटे। एक व्यक्ति साधु के पास पहुंचता है, कहता है इतना दुख है संसार में, इस गृहस्थी में बहुत दुख है, पत्नी ने दुखी करके छोड़ा है, बच्चों ने दुखी करके छोड़ा है, मुझे छुड़ाओ। साधु कहता है चलो मैं तुमको छुड़ाता हूं। साधु जाता है जंगल में, एक झाड़ को पकड़ लेता है साधु और जोर जोर से चिल्लाता है छुड़ाओ छुड़ाओ छुड़ाओ। वो व्यक्ति कहता है कैसे अजीब पागल हो, खुद ही पकड़े हो और खुद ही कहते हो छुड़ाओ छुड़ाओ। वो साधु कहता है संसार को किसने पकड़ा है, तुमने ही पकड़ के रखा है, तुम सोचते हो मेरे बगैर इनका क्या होगा, सब अच्छा होगा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। बिना तुम्हारे भी संसार चल सकता है, हम सोचते हैं मेरे पत्नी का पति का बच्चों का मेरे बगैर क्या होगा, अच्छा ही होगा, तुम ही बाधा हो। सोचता है मैं इतना बड़ा हेड डिपार्टमेंट का, मेरे जाने के बाद क्या होगा, डिपार्टमेंट कैसे चलेगा, ऑफिस कैसे चलेगा, सेंटर कैसे चलेगा, सारी चीजें। अरे तुम्हारे बाद जो आने वाला है ना तुमसे 10 गुना एक्सपर्ट है, तुम्हारे जाने की इंतजार में है, तुम जाओ और वो आए, तुम ही बाधाओ। और हम सोच रहे हैं मेरे बगैर ये कैसे चलेगा। चाहे अध्यात्म का क्षेत्र हो या संसार का क्षेत्र, हम केवल निमित्त हैं। मोहम्मद रफी ने एक बहुत सुंदर बात कही है, उन्होंने कहा है कि ये जो आवाज खुदा ने मुझे दी है, अगर वो चाहता तो किसी और की हलक में कंठ में ये आवाज डाल सकता था, धन्यवाद उसका मेरा नहीं है। मोहम्मद रफी जैसी आवाज एकमात्र आवाज होगी सृष्टि पर। पर नम्रता देखो कितनी है, क्या कहता है, खुदा ने मेरे कंठ में आवाज डाली है, वो चाहता तो किसी और के गले में भी डाल सकता था, उसने मुझे निमित्त बनाया है भगवान ने इस सेवा के लिए, वो चाहे तो किसी और को भी बना सकता है। इसके लिए अपना अहंकार नहीं, जाय विधि राखे राम ताई विधि रहिए, थाई विल शैल बी डन, होई सोई जो राम रचि राखा। तो संतुष्टता तृप्ति बहुत दे दिया बाबा और नहीं चाहिए। और अतृप्ति एक संस्कार है, असंतुष्टता एक संस्कार है, कितना भी मिला नहीं मिलता है, ऐसा लगता है कुछ और चाहिए। टोली लेने जा रहे हैं, सबसे छोटा आम हमको मिला। टोली मिल रही है, दूसरों को चार बादाम मिली, मुझे एक ही मिला। सबकी हाथों में देख लिया तुम्हारे कितने हैं, तुमको तीन बादाम मुझे एक। यहां पर भी पक्षपात, जानबूझ के मुझे एक दी होगी, मुझे पता था इसका कुछ तो है मेरे बारे में, इसके लिए मुझे देखते ही एक बादाम दे दी। और जरूर इसका कुछ लगाव है उधर, चार उधर क्यों थी। अतृप्ति, असंतुष्टता, डिससैटिस्फैक्शन, संस्कार है उसका व्यक्ति से, वस्तुओं से कोई लेना देना नहीं। एंड्रयू कार्नेगी सबसे रईस आदमी था अमेरिका में, जब वो मरा उसके बाद में 10 अरब, बहुत संपत्ति थी, फिर भी दुखी होकर मरा। सोचता था मेरी इतनी पीढ़ियां तो खुशी रहेगी, खुश रहेंगे, उसके आगे क्या होगा। दोनों हाथें खोलकर भी लुटाए तो भी पैसा इतना था, परंतु दुखी होके गया वो। तो तृप्ति का, संतुष्टता का, सेटिस्फैक्शन का, कंटेंटमेंट का, वस्तुओं से, व्यक्तियों से, पैसों से, संपत्ति से, पद से, पोजीशन से कोई संबंध नहीं है, वो संस्कार है। जो मिल पाना था वो पा लिया, अब नहीं चाहिए, बहुत खुश है। एक गरीब व्यक्ति कितना खुशी खुशी सोता है, एक भिखारी देखो सड़क के किनारे आराम से सोता है, और उधर करोड़पति चार नींद की गोलियां खाने के बाद में भी टॉसिंग ऑन द बेड, नींद नहीं आती है। तो तीसरी रेखा है संतुष्टता की, चौथी रेखा है हाथों की। हाथ क्या करे, श्रेष्ठ कर्म करे। हमारे हाथों से कोई विकर्म पाप कर्म ना हो जाए, पुण्य करते जाओ, लुटाते जाओ। राजू भाई जी हमेशा कहते हैं, बाबा की जितनी मुरलियां राजू भाई जी ने अपने हाथ से लिखी है, टाइप की है, कितना पुण्य मिल गया इन हाथों को, सफल हो गए ना हाथ, भगवान के महावाक्य इन हाथों ने लिखे, कितना भाग्य है। तो हमारे हाथों से पुण्य हो, वरदान हो, देह दूसरों को आथत दे, साहस दे, धैर्य दे, सहयोग दे। सहयोग के नोट्स अपने जेब में रखो, बाबा ने किसी मुरली में कहा था। तो चौथी रेखा कौन सी है, श्रेष्ठ कर्मों की रेखा। और पांचवी रेखा पाओ की, क्या, श्रीमत पर चलने की शक्ति। जो श्रीमत पर है स्वतः सुरक्षित है, जिसने श्रीमत तोड़ी, श्रीमत से बाहर गया, असुरक्षा। तो श्रीमत को समझना, श्रीमत को जानना, श्रीमत की गहराई में जाना, तो ये पांचों ही रेखा आवश्यक है। एक रेखा मन की, दूसरी रेखा दृष्टि की, तीसरी रेखा संतुष्टता की, चौथी रेखा श्रेष्ठ कर्म की, और पांचवी रेखा मर्यादाओं की, श्रीमत की, रूल्स की, रेगुलेशंस की, लॉस की, कोड्स ऑफ कंडक्ट की, डिक्टेट्स की, कमांडमेंट्स की। इसके लिए उन श्रीमत की रेखाओं को भी जानना है, ब्राह्मण जीवन की श्रीमत क्या है उसको समझना है, तब हमारा चित्र एकदम सच्चा होगा, प्योर होगा, क्लियर होगा, ऐसी ऐसा चित्र कि जिसमें वो दिखाई दे, तकदीर बनाने वाला दिखाई दे, ऐसा चित्र हमको बनाना है। फिर बाबा ने और भी कुछ बातें की, समय और संख्या की वहां, और हद वहां नहीं है, यहां है। समय, संख्या और हद यहां, वहां समय नहीं है, हद नहीं है, संख्या नहीं है। जिसको मिलना है, जितना समय मिलना चाहो मिल सकते हो, यहां हद है। तो जितना हो सके अपना चित्र जो है रियल हो, झूठ ना हो उसमें। जैसे एक राजा कहता है कि मुझे बहुत सुंदर चित्र बना के चाहिए, पर तो एकदम रियल हो वो चित्र। तो तीन चित्रकार अपनी अपने चित्रकला लेकर आते हैं। पहला चित्रकार एक फूल का चित्र बनाता है, कागज है जिस पर फूल है, रखा जाता है, तुरंत खिड़कियां खोली जाती है, एक मधुमक्खी आती है और फूल पर बैठ जाती है। सब लोग कहते हैं यही है, यही है, यही सच्चा चित्र है, एकदम रियल, कि मधुमक्खी भी धोखा खा गई। दूसरा चित्रकार को कहते हैं अब तुम अपना चित्र रखो। वो अपना चित्र रखता है, एक फल। एक बंदर कूद कर आता है, राजसी बंदर, और फल के पास पहुंचता है फल खाने के लिए। सब लोग कहते हैं नहीं नहीं ये है रियल चित्र। तीसरे चित्रकार से पूछा जाता है तुमने क्या बनाया, वो कहता है पर्दा। कौन सा चित्र बनाया, पर्दे का, ये है। तो अब किसको बुलाया जाए, तो राजा कहता है मैं खुद ही जाता हूं। राजा वहां पहुंचता है और वो पर्दा इतना रियल होता है कि पर्दा को हटा के राजा अंदर घुसने की कोशिश करता है और धड़ाम से टकराता है। पहले दो तो जानवर धोखा खा गए, पर यहां मनुष्य भी धोखा खा गया। तो यही सर्वोत्तम चित्र है पर्दे का। तो रियल चित्र हो, लाइव चित्र हो, लिविंग चित्र हो, जीवंत चित्र, मूर्तिमंत चित्र, इनकार्नेट पिक्चर, जिसमें तकदीर बनाने वाला दिखाई दे। तो आज की मुरली में बाबा ने ऐसा हमारा चित्र देखा, लकीरें देखी, मूल्य देखा, संपन्नता देखी, कमियां क्या है वो मिटाने के लिए कहा, और ये पांचों चीजों पर काम करना है। ठीक है, याद प्यार मुरली में कहीं अलग से दिया हुआ नहीं है, पर हम तैयार करेंगे ऐसे। कैसे बच्चे, तकदीर की तस्वीर बनाने वाले। और एक अनुभव की कलम बताइए एक जगह, अनुभव की कलम से कर्म के कागज पर तकदीर की तस्वीर बनाने वाले बच्चों को। ऐसे आंखों में रूहानियत की शक्ति वाले बच्चों को, ऐसे मनसा वृत्ति में शुभ वृत्ति वाले बच्चों को, ऐसे मुख पर मुस्कुराहट अर्थात संतुष्टता वाले बच्चों को, ऐसे हाथों की लकीर अर्थात श्रेष्ठ कर्म करने वाले बच्चों को, ऐसे पाव हर कदम श्रीमत पर रखने वाले बच्चों को, ऐसे संपन्न बच्चों को, ऐसे मूल्यवान तस्वीर बनाने वाले बच्चों को, ऐसे बाप दादा के अमूल्य बच्चों को, बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। तो वो जो परम चित्रकार है परमात्मा, अब उसकी याद में हम बैठेंगे। सभी अलर्ट होके बैठ जाए। जिसने इस सृष्टि को रंगा है, जिसने इस सृष्टि की रचना की है, ऐसा चित्रकार और कोई नहीं, ऐसा तस्वीर बनाने वाला और कोई नहीं। तो जैसा वो तस्वीर बनाने वाला है, जैसे वो परम चित्रकार है, वैसे हम भी अपने ही जीवन के परम चित्रकार बन जाए। ओम शांति।
हरी वसुंधरा पे नील नील ये गगन, कि जिस पे बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन, दिशाएं देखो रंग भरी, दिशाएं देखो रंग भरी, चमक रही उमंग भरी, ये किसने फूल फूल पे, ये किसने फूल फूल पे किया सिंगार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है,
ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
अटल ये पर्वतों की चोटियां। ये सर्प सी घुमेरदार घेरदार घाटियां, ध्वजा से ये खड़े हुए, ध्वजा से ये खड़े हुए हैं वृक्ष देवदार के, गलीचे ये गुलाब के, बगीचे ये बहार के, ये किस कवि की कल्पना, ये किस कवि की कल्पना का चमत्कार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है,
ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
कुदरत की इस पवित्रता को तुम निहार लो, को अपने मन में तुम उतार लो, चमका लो आज लालिमा, चमका लो आज लालिमा अपने ललाट की, कण कण से झांकती तुम्हें सभी विराट की, अपनी तो आंख एक है, अपनी तो आंख एक है उसकी हजार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है,
ये कौन चित्रकार।